मैं सत्यजीत सिंह सेंगर प्रिय अब शक तथा पल्लव राजवंश के बारे में रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। इतिहास के साधन शकों के प्रारंभिक इतिहास के ज्ञान के लिए हमें मुख्यतः चीनी स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है। इनमें पान कुकृत शियन हान सू अर्थात प्रथम हान वंश का इतिहास तथा फान एकृत हाउ हान सू अर्थात परवर्ती हान वंश का इतिहास उल्लेखनीय है। इनके अध्ययन से यू ची हुन तथा पार्थियन जाति के साथ शकों के संघर्ष तथा उनके प्रसार का ज्ञान होता है। चीनी ग्रंथ तथा लेखक शकों को सई अथवा शाई वांग कहते हैं। भारत में शासन करने वाले शक तथा पल्लव शासकों का ज्ञान हमें मुख्य रूप से उनके लेखों तथा सिक्कों से होता है। शकों के प्रमुख लेख निम्नलिखित है। राजुल का प्रथम मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख, षोडास का मथुरा दानपत्र लेख, तीसरा नहपानकालीन नासिक के गुहा लेख, चौथा नहपानकालीन जुन्नार का गुहा लेख, पांचवा उषा वदात के नासिक गुहा लेख, छठा रुद्रदमन का आंधव कच की खाड़ी का लेख, सातवा रुद्रदामन का गिरनार जूनागढ़ का लेख, आठवां गोंडो फर्निज का तख्ते बाही पेशेवर के यूसुफ जई क्षेत्र में स्थित का लेख। सातवाहन राजाओं के लेखों से शकों के साथ उनके संबंधों का ज्ञान होता है। लेखों के अतिरिक्त पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत के बड़े भाग से शक राजाओं के बहुसंख्यक सिक्के प्राप्त हुए हैं। कनिष्क के लेखों से पता चलता है कि कुछ शक छत्रप तथा महाछत्रप उसकी आधीनता में देश के कुछ भागों में शासन करते थे। भारतीय साहित्य में भी शकों का यत्र तत्र उल्लेख प्राप्त होता है। रामायण तथा महाभारत में यवन पल्लव आदि विदेश जातियों के साथ शकों का उल्लेख हुआ है। कात्यायन तथा पंतजलि भी शकों से परिचित थे। मनुस्मृति में हम इनका उल्लेख पारद द्रविड़ पल्लव आदि के साथ पाते हैं। पुराणों में भी शक मुरुंड यवन आदि जातियों का उल्लेख किया गया है। इनके अतिरिक्त कई अन्य भारतीय ग्रंथ जैसे गार्गी संहिता विशाखादत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम वाड़कृत हर्ष चरित्र राजशेखर कृत काव्य मीमांसा आदि भी शकों से परिचित हैं। जैन स्रोतों में शकों के विषय में विस्तृत विवरण दिया गया है। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक में उज्जयिनी के ऊपर शकों के आक्रमण तथा विक्रमादित्य द्वारा उनके पराजित किए जाने का विवरण सुरक्षित है। भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को शक द्वीप अथवा शक स्थान कहा गया है। उपरोक्त सूत्रों के आधार पर शकों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। उत्पत्ति तथा प्रसार। शक मूलतः सिर दरिया के उत्तर में निवास करने वाली खानाबदोश तथा बर्बर जाति थी। चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि 165 ईसा पूर्व के लगभग यू ची नामक एक अन्य जाति ने उन्हें परास्त कर वहां से खदेड़ दिया। शकों ने सिर दरिया पार कर बल्ख पर अधिकार कर लिया तथा वहां के यवनों को परास्त कर भगा दिया। परंतु यू ची जाति ने वहां भी उनका पीछा किया तथा शक पुनः परास्त हुए। पराजित शक जाति दो शाखा में विभक्त हो गई। उनकी एक शाखा दक्षिण की ओर गई तथा की पिन कपीशा पर अधिकार कर लिया। दूसरी शाखा पश्चिम में ईरान की ओर आई। वहां उसे शक्तिशाली पार्थियन सम्राटों से युद्ध करना पड़ा। शकों ने दो पार्थियन राजाओं फ्रात द्वितीय 128 ईसा पूर्व तथा आर्तबान 123 ईसा पूर्व को पराजित कर पूर्वी ईरान तथा एरियाना के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। परंतु पार्थियन नरेश मित्रदत्त द्वितीय 123-88 ईसा पूर्व ने शकों को बुरी तरह परास्त कर ईरान के पूर्वी प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। यहाँ से भागकर शक हेलमंड घाटी दक्षिणी अफगानिस्तान में आए तथा वहीं बस गए। इस स्थान को शक स्थान या सिस्तान कहा गया है। यहाँ से कंधार और बोलन दर्रा होते हुए वे सिंधु नदी घाटी में जा पहुँचे। उन्होंने सिंध प्रदेश में अपना निवास स्थान बना लिया। शकों के साथ संपर्क के कारण इस स्थान को शक द्वीप कहा गया। इस प्रकार भारत में शक पूर्वी ईरान से होकर आए थे। उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेशों से यवन सत्ता को समाप्त कर उत्तरापथ पश्चिमी भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। तक्षशिला मथुरा महाराष्ट्र उज्जैनी आदि स्थानों में शकों की भिन्न भिन्न शाखाएं स्थापित हुई। शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक छत्रप कहे जाते थे। शकों की प्रमुख शाखाओं का परिचय इस प्रकार है। तक्षशिला के सक शासक। तक्षशिला के प्रारंभिक सक शासकों में मेउस का नाम सर्वप्रमुख है। सामान्यतः उसका समय 20 ईसा पूर्व से 22 ईस्वी तक माना जाता है। पश्चिमोत्तर प्रदेश से उसके अनेक सिक्के मिलते हैं। उनकी पहचान तक्षशिला ताम्रपत्र के महाराज मोघ से की जाती है। अल्टेकर का विचार है कि वो पहले पार्थियनों का सामंत था। पार्थियन शासक के निर्बल पड़ जाने पर उसने अपने को स्वतंत्र कर लिया। उसके साम्राज्य में पूर्वी गंधार सम्मिलित था तथा तक्षशिला उसकी राजधानी थी। सिक्कों के आधार पर कहा जाता है कि उसका साम्राज्य पुष्कलावती, कपिसा तथा पूर्व में मथुरा तक विस्तृत था। वह भारत का प्रथम शक विजेता था। मेउस के पश्चात एजेज तक्षशिला का शक शासक हुआ। वह भी एक प्रतापी राजा था। उसने पंजाब में यूथिडेमस कुल के यवनों को परास्त कर वहाँ अपना आधिपत्य कायम किया। उसने यवन नरेश अपोलोडोटस द्वितीय तथा हिप्पास्ट्रेटस की मुद्राओं को पुनरंकित करवाया। एजेज के बाद एजिलीसेज राजा हुआ। वह संभवतः एजेज का पुत्र था तथा कुछ समय तक उसने अपने पिता के साथ मिलकर राज्य किया था। एजिलीसेज की मुद्राएं दो प्रकार की है। प्रथम प्रकार की मुद्राओं के मुख्य भाग पर यूनानी लिपि में एजेज का नाम तथा पृष्ठ भाग पर खरोष्टी में एजिलीसेज का नाम मिलता है। इन दोनों को महाराज कहा गया है। द्वितीय प्रकार की मुद्राओं के मुख्य भाग पर यूनानी में एजिलीसेज तथा पृष्ठ भाग पर खरोष्टी में एजेज नाम उत्कीर्ण है। इस आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि एजेज नाम के दो शक शासक हुए। एजिलीसेज के पहले एजेज प्रथम हुआ तथा एजेज द्वितीय एजिलीसेज के बाद राजा हुआ। एजेज द्वितीय के ही समय से पश्चिमोत्तर भारत से शकों की शक्ति का ह्रास प्रारंभ हो गया। इसके लिए दो कारण उत्तरदायी थे। पहला, फ्रायोटिस नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। दूसरा, पश्चिम की ओर से गोंडोफर्निज ने शक राज्य पर आक्रमण किया तथा बाद में तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। फिलोस्टेटस के विवरण से ज्ञात होता है कि फ्रायोटिज एक शक्तिशाली राजा था तथा सिंध प्रदेश के क्षत्रप पर भी उसका अधिकार था। ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रायोटिज को पराजित करने के बाद ही पर्थियन गोंडोफर्निज ने तक्षशिला पर अपना अधिकार किया था। इस प्रकार तक्षशिला में शकों का शासन समाप्त हुआ। मेउस से एजेज द्वितीय तक के राजाओं ने लगभग 20 ईसा पूर्व से 43 से लेकर 44 ईस्वी तक शासन किया। भारतीय शासन तंत्र के विकास में उनका मुख्य योगदान यह था कि उन्होंने क्षत्रप शासन प्रणाली का प्रचलन किया। चुक्ष तक्षशिला के उत्तर में वर्तमान चच्छ, कपिशा, अभिसार, प्रस्थ, पुरुषपुर अर्थात पेशावर, शाकल, मथुरा आदि प्रदेशों में क्षत्रपों की नियुक्ति की गई थी। इनमें से अधिकांश क्षत्रप कुलों ने शकों के पतन के बाद पल्लवों तथा कुषाणों की अधीनता में शासन किया। क्षत्रप वंश, मथुरा के शक क्षत्रप। मथुरा में शकों का शासन कब और कैसे स्थापित हुआ यह निश्चित रूप से बता सकना कठिन है। टारन तथा स्टेन कोनो जैसे कुछ विद्वान जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के आधार पर यह प्रतिपादित करते हैं कि मालवा में विक्रमादित्य 57 BC द्वारा पराजित होने और खदेड़े जाने पर शक मथुरा में आकर बस गए। इसी शासक को मालव अथवा विक्रम संवत का संस्थापक माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार इसके 135 वर्ष बाद शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ। मथुरा के क्षत्रपों का तक्षशिला के शकों का साथ क्या संबंध था यह भी ठीक ठाक पता नहीं। मथुरा के सिंह शीर्ष अभिलेख में इस क्षेत्र के अनेक शक सरदारों के नाम मिलते हैं। संभवतः यह अभिलेख महाक्षत्रप राजुल के काल में उसकी प्रधान महिषी द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। राजुल का समीकरण महाक्षत्रप राजवुल से किया जाता है जिसका उल्लेख मुरा अर्थात मथुरा से प्राप्त ब्राह्मी में उत्कीर्ण लेख में हुआ है। मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख से पता चलता है कि राजुल या राजवुल मथुरा का प्रथम शासक था। उसके सिक्के पर महाक्षत्रप की उपाधि खुदी हुई मिलती है। सिक्के सिंधु नदी घाटी से गंगा के दोआब तक पाए गए हैं। सिक्कों की प्राप्ति स्थान से ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि राजवुल का अधिकार पूर्वी पंजाब से मथुरा तक था। राजवुल के बाद उसका पुत्र सोडास राजा हुआ। मथुरा से उसके अभिलेख तथा सिक्के मिलते हैं। उसके सिक्कों पर केवल क्षत्रप की उपाधि मिलती है परंतु अमोहिनी दान पत्र में उसे महाक्षत्रप कहा गया है। ऐसा लगता है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद वह महाक्षत्रप बना था। पूर्वी पंजाब से उसका कोई सिक्का नहीं मिलता। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसका राज्य केवल मथुरा तक ही सीमित था। सोडास के उत्तराधिकारियों के विषय में मैं पता नहीं है। एक सिक्के पर तोरणदास नामक किसी सख्त सरदार का उल्लेख हुआ है जो अपने को महाक्षत्रप का पुत्र बताता है। संभव है कि वो सोडास का ही पुत्र रहा हो। इसके पश्चात मथुरा से शकों की स्वतंत्र सत्ता का अंत हो गया तथा वहाँ कुषाणों का आधिपत्य हो गया। अब सक क्षत्रप कुषाण नरेशों की आधीनता में शासन करने लगे। पश्चिमी भारत में दो सक वंशों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। पहला महाराष्ट्र का छहरात वंश, दूसरा कार्दमक चष्टन वंश अथवा सुराष्ट्र और मालवा के सक क्षत्रप। इन्होंने कुछ समय के लिए महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश सातवाहनों से छीन लिया था। इनका विवरण इस प्रकार है। पहला छहरात वंश। इस वंश ने संपूर्ण महाराष्ट्र, लाड तथा सुराष्ट्र प्रदेश पर शासन किया। छहरात वंश का पहला राजा भूमक था। उसके सिक्के गुजरात, कठिवाड़ तथा मालवा के क्षेत्र से मिलते हैं। सिक्कों पर ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों में लेख लिखे गए हैं। खरोष्ठी लिपि के प्रयोग से ऐसा लगता है कि पश्चिमी राजपूताना तथा सिंध के कुछ भागों पर भी उसका अधिकार था। भूमक का कोई अभिलेख नहीं मिलता। नहपान इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्के अजमेर से नासिक तक के क्षेत्र से फैले मिले हैं। ये चांदी तथा तांबे के हैं। सिक्के निश्चित मानक के हैं। उसके समय में सोने तथा चांदी के सिक्के कार्ड्स पार की विनिमय दर 1:35 थी। नासिक की एक लेख में 70,000 कार्ड्स पारों का मूल्य 2,000 स्वर्ण मुद्रा में दिया गया है। सिक्कों पर वह राजन की उपाधि धारण किए हुए है। नहपान के आमत्य अर्यमन का एक अभिलेख जुन्नार पूना से मिलता है। उसके दामाद ऋषभदत्त उषावदात के गुहा लेख नासिक तथा कार्ले पूना से मिले हैं। ऋषभदत्त नहपान के समय में उसके दक्षिणी प्रांत गोवर्धन नासिक तथा मामल पूना का वायसराय था। नासिक के गुहालेख से ज्ञात होता है कि जब राजस्थान के उत्तम भद्र जाति के लोग मालवों से घिर गए तो उनकी रक्षा के लिए ऋषभदत्त वहां गया था। उसने मालवों को बुरी तरह परास्त किया था तथा इसके बाद पुष्कर तीर्थ में दान दिया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूताना के पुष्कर तीर्थ क्षेत्र पर भी नहपान का प्रभाव था। नासिक तथा पूना जिलों को उसने सात वाहनों से जीता था। इस प्रकार उसका राज उत्तर में अजमेर से लेकर दक्षिण में उत्तरी महाराष्ट्र तक विस्तृत था। पेरिप्लस के अनुसार उसकी राजधानी मिनगार भड़ौच तथा उज्जैन के बीच स्थित थी। नहपान ने लगभग 119 ईस्वी से 125 ईस्वी तक राज्य किया। वह सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित हुआ और मार डाला गया। जोगलथम्बी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा पुनरंकित किए गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि गौतमी पुत्र ने नहपान के जोगलथम्बी स्थित कोषगार पर अधिकार कर लिया। नहपान के उत्तराधिकारियों के विषय में हमें ज्ञात नहीं है। लगता है कि उसकी मृत्यु के साथ ही पश्चिमी भारत से छहरातों की शक्ति का अंत हो गया। दूसरा कार्दमक चष्टन वंश। छहरातों के पश्चात सुराष्ट्र तथा मालवा में शकों के एक दूसरे कुल ने शासन किया। यह नया वंश कार्दमक वंश के नाम से प्रसिद्ध है। पश्चिमी भारत में इस नवीन वंश की सत्ता स्थापित करने वाले पहला शासक चष्टन था। वह यमोत्की का पुत्र था। चष्टन संभवतः कुषाणों की अधीनता से पहले सिंध क्षेत्र का क्षत्रप था। नहपान की मृत्यु के बाद उसे कुषाण साम्राज्य के दक्षिण पश्चिमी प्रांत का वायसराय नियुक्त किया गया। लगता है कि बाद में उसने अपने को स्वतंत्र कर लिया तथा महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर ली। वृद्धावस्था में चष्टन ने अपने पुत्र जय दामन को क्षत्रप नियुक्त किया। संभवतः उसने सात वाहनों से उज्जैनी की जीत लिया। चष्टन के जीवन काल में ही जयदामन की मृत्यु हो गई और वह स्वतंत्र शासक नहीं हो पाया। उसके बाद चष्टन ने अपने पौत्र जयदामन के पुत्र रुद्रादमन प्रथम को क्षत्रप नियुक्त किया। आंधो कच्छ खाड़ी अभिलेख से ज्ञात होता है कि 130 ईस्वी में चष्टन अपने पौत्र रुद्रदमन के साथ मिलकर शासन कर रहा था। चष्टन का पुत्र जयदामन कभी महाक्षत्रप नहीं बन सका। मुद्राओं पर उसकी उपाधि केवल क्षत्रप की है। इस आधार पर बुल्लर तथा भंडारकर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उसके समय में शकों को सात वाहनों के हाथों पराजय उठानी पड़ी थी, परंतु इस प्रकार का निष्कर्ष असंगत है। अंधव के अभिलेख से स्पष्ट हो जाता है कि चष्टन तथा रुद्रदमन शासक थे, अतः जयदामन को स्वतंत्र रूप से शासन करने का अवकाश नहीं मिला। ऐसी स्थिति में सात वाहनों द्वारा उसके समय में शकों की पराजय का प्रश्न ही नहीं उठता।
महाक्षत्रप रुद्रदामन। चष्टन की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का राजा हुआ। वह अभी तक भारत में शासन करने वाले शक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण था। जूनागढ़ से शक संबत 72 का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ, यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सभी जातियों के लोगों ने रुद्र दामन को अपना रक्षक चुना था तथा उसने महाक्षत्रप की उपाधि स्वयं ग्रहण की थी। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि उसके पूर्व शकों की शक्ति निर्बल पड़ गई थी, जिसे अपने बाहुबल से रुद्र दामन ने पुनः प्रतिष्ठित किया। वह एक महान विजेता था। अभिलेख में निम्नलिखित स्थानों की विजय करने का श्रेय उसे प्रदान किया गया है। आकर, अवंती, इनसे तात्पर्य पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा से है। आकर की राजधानी विदिशा तथा अवंती की राजधानी उज्जैनी में थी। अनु, नर्मदा तट पर स्थित महिष्मती में यह प्रदेश स्थित था। इस स्थान की पहचान मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में स्थित महेश्वर अथवा मानधाता से की जाती है। अपरांत, इससे तात्पर्य उत्तरी कोंकण से है। इसकी राजधानी शूर्पारक में थी। प्राचीन साहित्य में इस स्थान का प्रयोग पश्चिमी देशों को इंगित करने के लिए किया गया है। महाभारत में इसे परशुराम की भूमि बताया गया है। अनर्थ तथा सुराष्ट्र, इनसे तात्पर्य उत्तरी तथा दक्षिणी काठियावाड़ से है। पहले की राजधानी द्वारका तथा दूसरे की राजधानी गिरिनगर में थी। ये सभी आजकल गुजरात प्रांत में थे। कुकुर, यह अनर्थ का पड़ोसी राज्य था। डीपी सरकार के अनुसार यह उत्तरी काठियावाड़ा में स्थित था। स्वभ्र, गुजरात की साबरमती नदी के तट पर यह प्रदेश स्थित था। निषाद, महाभारत में इसे इस स्थान का उल्लेख मत्स्य के बाद मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यह उत्तरी राजस्थान में स्थित था। यही विनिशन तीर्थ था। बुलर ने निषाद देश की स्थिति हरियाणा के हिसार भटनेर क्षेत्र में निर्धारित की है। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने दक्षिणापथ के स्वामी शातकर्णी को 2 बार पराजित किया, किंतु संबंध की निकटता के कारण उसका वध नहीं किया गया। यह पराजित नरेश वशिष्ठपुत्र पुलुमावी था। नासिक अभिलेख से पता चलता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी असिक, अस्मक, मूलक, सुराष्ट्र, कुकुर, उपरांत, अनूप, विदर्भ, आकर तथा अवंती का शासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु के बाद रुद्र दामन ने उसके उत्तराधिकार वशिष्ठपुत्र पुलुमावी से उपर्युक्त में से अधिकांश प्रदेशों को जीत लिया था। सिंध सौवीर क्षेत्र को उसने कनिष्क के उत्तराधिकारियों से जीता होगा। जूनागढ़ अभिलेख स्वाभिमानी तथा अदम्य योद्धेयों के साथ उसके युद्ध तथा उनकी पराजय का भी उल्लेख करता है, जिन्होंने संभवतः उत्तर की ओर से उसके राज्य पर आक्रमण किया होगा। योद्धेय गणराज्य पूर्वी पंजाब में स्थित था। वे अत्यंत वीर तथा स्वाधीनता प्रेमी थे। पाणिनि ने उन्हें आयुध जीवी संघ अर्थात शस्त्रों के सहारे जीवित रहने वाला कहा है। योद्धेयों को पराजित कर रुद्र दामन ने उन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया तथा उसका राज्य उनके आक्रमणों से सदा के लिए सुरक्षित हो गया। महान विजेता होने के साथ साथ रुद्र दामन एक प्रजापालक सम्राट भी था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था तथा अशोक के समय में इससे नहरें निकलवाई गई थीं, का बांध भारी वर्षा के कारण टूट गया और उसमें 24 हाथ लंबी, इतनी ही चौड़ी और 75 हाथ गहरी दरार बन गई। इसके फलस्वरूप झील का सारा पानी बह गया। इस दैवीय विपत्ति के कारण जनता का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया तथा चारों ओर हाहाकार मच गया। चूंकि इसके पुनर्निर्माण में बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी, अतः उसकी मंत्रिपरिषद ने इस कार्य के लिए धन व्यय किए जाने की स्वीकृति नहीं प्रदान किया, किंतु रुद्र दामन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए ही अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में बांध की फिर से मरम्मत करवाई तथा उससे 3 गुना मजबूत बांध बनवा दिया। वह एक उदार शासक था, जिसने कभी अपनी प्रजा से न तो अनुचित धन वसूल किया और न ही बिगार तथा प्रण ही लिया। उसका कोष स्वर्ण, रजत, हीरे आदि बहुमूल्य धातुओं से परिपूर्ण था। उसके शासन में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। उसने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया था। प्रत्येक प्रांत का शासन योग्य तथा विश्वासपात्र अमत्य के अधीन रखा गया था। अनर्थ सुराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। अन्य प्रादेशिक शासकों के विषय में हमें ज्ञात नहीं है। उसकी एक मंत्री परिषद थी जिसमें दो प्रकार के मंत्री होते थे। पहला मति सचिव, ये उसके व्यक्तिगत सलाहकार होते थे। दूसरा कर्म सचिव, ये कार्यकारी मंत्री तथा कार्यपालिका के अधिकारी होते थे। इन्हीं में से राज्यपाल, कोषाध्यक्ष, अधीक्षक आदि की नियुक्ति की जाती थी। रुद्रदामन प्रशासनिक कार्य अपनी मंत्रिपरिषद की परामर्श से ही करता था तथा शक्ति संपन्न होते हुए भी निरंकुश नहीं था। जूनागढ़ अभिलेख में उसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समान उसने भी पराजित राजाओं के राज्य पुनः वापस कर दिए थे। संभवतः ये शासक वे थे जिन्हें इसके पूर्व गौतमीपुत्र शातकर्णी ने पराजित किया था, क्योंकि नासिक लेख से पता चलता है कि उसने क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन किया था। रुद्रदामन महान विजेता एवं कुशल प्रशासक होने के साथ ही साथ एक उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या प्रेमी था। वह वैदिक धर्मानुयायी था तथा संस्कृत भाषा को उसने राजश्रय प्रदान किया। उसका शिलालेख अपनी शैली के रोचकता, भाव प्रवणता एवं हृदय वर्जन के लिए प्रसिद्ध है। वह वस्तुतः एक छोटा गद्य काव्य ही है। इससे पता चलता है कि रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीति तथा तर्क विद्या में प्रवीण था। उसे गद्य पद रचना में निपुण बताया गया है। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ उसका अभिलेख प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है तथा इससे उस समय संस्कृत भाषा के पर्याप्त रूप से विकसित होने का प्रमाण मिलता है। उसके समय में उज्जैनी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। गिरिनार अभिलेख का कथन है कि वह अनेक स्वयंवरों में गया था तथा उसने कई राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया था। इन उल्लेखों से प्रकट होता है कि उसके समय तक शक भारतीय समाज में पूर्णतया घुल मिल गए थे। इस प्रकार रुद्रदामन एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, उदार एवं लोकोपकारी प्रशासक तथा हिंदू धर्म एवं संस्कृति का महान उन्नायक था। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उसका शासनकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक सामान्य तौर से स्वीकार किया जाता है। उसका अंत किन परिस्थितियों में हुआ हमें यह ज्ञात नहीं है। 150 ईस्वी के गिरनार अभिलेख के पश्चात हम उसका नाम नहीं सुनते। निसंदेह उसका शासनकाल पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। रुद्रदामन के उत्तराधिकारी तथा शक सत्ता का विनाश। रुद्रदामन की मृत्यु के पश्चात उज्जैनी के शकों की शक्ति क्रमशः घटने लगी। मुद्रा संबंधी साक्ष्यों से हमें ज्ञात होता है कि रुद्रदामन के बाद उसका पुत्र दाम्यस्द गद्दी पर बैठा। वह अपने पिता के समय में क्षत्रप के रूप में शासन कार्यों में भाग ले चुका था। महाक्षत्रप उपाधि वाली कुछ मुद्राओं पर उसका वृद्धावस्था का चित्र मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह इसी अवस्था में स्वतंत्र राजा हुआ था और थोड़े समय तक राज्य किया। इसके बाद उसका पुत्र जीवदामन 178 से 9 ईस्वी महाक्षत्रप बना। तत्पश्चात लगभग दो वर्षों तक महाक्षत्रप का पद रिक्त रहा। 181 ईस्वी में रुद्रसिंह प्रथम महाक्षत्रप बना। उसने 7 वर्षों तक 181 से 188 ईस्वी राज्य किया। इसके बाद पुनः दो वर्षों तक महाक्षत्रप पद रिक्त रहा। रुद्रसिंह प्रथम 191 ईस्वी में पुनः महाक्षत्रप बना तथा 196 ईस्वी तक राज्य करता रहा। इसके बाद जीवदामन पुनः राजा हुआ और 197 से 99 ईस्वी तक राज्य किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाक्षत्रप पद दो बार रिक्त रहा। इसका कारण अभीरों की शक्ति का प्रबल होना था। 181 ईस्वी के गुंडा के अभिलेख में आभीर सेनापति रुद्रभूति का उल्लेख हुआ है। ऐसा लगता है कि आभीर सेनापति ने महाक्षत्रप का पद हथिया लिया था तथा रुद्रसिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु शीघ्र ही रुद्रसिंह पुनः शक्तिशाली हो गया तथा महाक्षत्रप का पद प्राप्त कर लिया। 7 वर्षों के बाद उसे फिर पदच्युत होना पड़ा। उल्टेकर तथा भंडारकर के अनुसार इस समय एक दूसरे आभीर सेनानायक ईश्वरदत्त का उदय हुआ तथा उसने महाक्षत्रप का पद प्राप्त किया, परंतु रैप्सन इस मत से असहमत हैं और वे ईश्वरदत्त की तिथि 236 से 239 ईस्वी तक बताते हैं। ऐसा लगता है कि इस समय सातवाहनों के प्रबल हो जाने के कारण शकों के प्रभाव उठानी पड़ी। संभवतः सातवाहन नरेश यज्ञश्री शातकर्णी ने इसी समय शकों को परास्त किया तथा रुद्रसिंह उसकी अधीनता में क्षत्रप हो गया। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद शकों ने पुनः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तथा रुद्रसिंह प्रथम महाक्षत्रप बन बैठा। रुद्र सिंह प्रथम ने 196 ईस्वी तक राज्य किया। इसके बाद जीव दामन पुनः महाक्षत्र बना तथा लगभग 199 ईस्वी तक राज्य करता रहा। जीव दामन के बाद रुद्रसेन प्रथम महाक्षत्र बना। उसने 200 ईस्वी से 222 ईस्वी तक राज्य किया। सिक्कों से पता चलता है कि उसके बाद क्रमशः संघ दामन तथा दामसेन महाक्षत्र हुए। संघ दामन अजमेर उदयपुर के मालवों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इसी समय मालवों ने शकों की अधीनता से अपने को मुक्त कर लिया। दामसेन के 2 वर्षों बाद उसका पुत्र यशोदा वर्मन महाक्षत्र बना। रैपसन के अनुसार इन 2 वर्षों के बीच आभीर ईश्वरदत्त ने महाक्षत्र के रूप में राज्य किया। उल्टेकर के अनुसार मालवा में शक क्षत्रपों के सिक्के 250 ईस्वी के बाद नहीं मिलते। उनके विचार में वाकटाक नरेश विंध्य शक्ति के ने मालवा को शकों से छीन लिया। इस प्रकार क्रमशः शक सत्ता का ह्रास होने लगा। मुद्राओं में विश्वसेन भत्रिदावन यशोदामन द्वितीय रुद्रदामन द्वितीय आदि कुछ शक राजाओं के नाम से ज्ञात होते हैं, जिनके शासनकाल से संबंधित घटनाओं के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। पश्चिमी भारत का अंतिम शक नरेश रुद्रसिंह तृतीय था। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी ने उसे परास्त कर पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। जिस शिला पर यह उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। जूनागढ़ से लगभग 1 मील पूरब की ओर गिरनार पर्वत के पास जाने वाले दर्रे के पास यह स्थित है। जूनागढ़ का नाम इसमें गिरिनगर दिया गया है, जो बाद में गिरिनार भी कहा जाने लगा। सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इस लेख का पता लगाया तथा जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 7वें अंक में इसे प्रकाशित किया। तत्पश्चात लासेन एच विल्सन भगवान लाल इंद्रजी बुलर आदि विद्वानों ने इसका उल्लेख विभिन्न शोध पत्रिकाओं में किया। अंततः कीलहॉर्न महोदय ने एपिग्राफिया इंडिका के 8वें अंक में इसे प्रकाशित किया। यही प्रकाशन आज तक प्रमाणिक माना जाता है। जूनागढ़ लेख में कुल 20 पंक्तियां हैं, जिनमें अंतिम 4 पूर्णतया सुरक्षित हैं, शेष कहीं कहीं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यह शुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि कुषाणकालीन में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन के शासनकाल के 72 वर्ष का उल्लेख है। यह शक संवत की तिथि है। तदनुसार यह लेख 78+72=150 ईस्वी का है। जूनागढ़ लेख की रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। इसमें झील का पूर्व इतिहास भी लिखा गया है। साथ ही यह लेख रुद्रदामन की वंशावली विजयों शासन व्यक्तित्व एवं आदि पर भी सुंदर प्रकाश डालता है। भाषा तथा साहित्य की दृष्टि से भी इसका काफ़ी महत्व है। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित यह प्राचीनतम लेखों में से है, जिससे संस्कृत साहित्य के सुविकसित होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब हम यह देखते हैं कि उस समय सर्वत्र प्राकृत भाषा का ही वर्चस्व था, तब इस लेख का महत्व स्पष्ट हो जाता है। भाषा की दृष्टि से प्राकृत के समुद्र में यह लेख एक टापू के समान ही है। जूनागढ़ गिरनार लेख का हिंदी भाषांतर सिद्धि हो। यह सुदर्शन तालाब गिरनार से दूर तक भी मिट्टी और पत्थरों से चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई में छिद्र रहित जोड़ों से बंधी हुई मजबूत ढंग से सभी परतों को जोड़ने के कारण पर्वत की तलहटी के समान दिखाई देने वाला, जिसकी रंचाई उत्कृष्ट है, प्राकृत बांधों से युक्त बढ़िया नालों नहरों तथा मेढ़ियों से भलीभांति सज्जित 3 परतों में बांधे हुए बांध के कारण बहुत अच्छी दशा में विद्यमान है। राजा महाक्षत्र सुगृहित नामा स्वामी चष्टन के पौत्र राजा क्षत्र सुगृहित नामा स्वामी जयदामन के पुत्र राजा महाक्षत्र माननीयों से उल्लिखित रुद्रदामन 72वें वर्ष के मार्गशीर्ष प्रतिपदा के दिन निरंतर वर्षा करने वाले बादलों ने पृथ्वी को मानो एक विशाल समुद्र बनाया था। तब उर्जियत पर्वत से निकलने वाली सुवर्ण सिक्ता पलाशिनी आदि नदियों के भयंकर वेग से आने वाले बहाव के कारण यद्यपि तालाब की रक्षा के लिए सभी उपाय पहले किए गए थे, तब भी पर्वतों की चोटियों वृक्षों तटों गोपुरों घरों द्वारों की ऊपरी भागों का विध्वंस करने वाले प्रलय काल के जैसे अत्यंत भयावह वेग के झंझावत से हिलोरे गए। फेंके गए, पत्थर, पेड़, झंझावड़, लता वाला, नदी की तलहटी तक उखाड़ दिया गया। 420 हाथ लंबी, इतनी ही चौड़ी तथा 75 हाथ गहरी दरार से सब पानी बह गया तथा ऊसर रेगिस्तान की तरह दुर्दशा को प्राप्त हुआ। यह तालाब मौर्य नरेश चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्य गुप्त ने बनवाया था। मौर्य अशोक के लिए यवनराज तुषास्प ने उस तालाब को अपने निरीक्षण में बड़ी बड़ी नहरों से तथा राजा उपाधि के योग्य उसने दरार में दिखाई पड़ी बड़ी बड़ी नालियों से तथा विशाल बांध से युक्त बनाया। जन्म से लगातार राज लक्ष्मी धारण करने से सभी वर्णों के लोगों ने उसके पास आकर अपने रक्षा के लिए अपना स्वामी बनाया था, जिसने युद्ध को छोड़कर अन्यत्र आजीवन मानव वध न करने की सत्य प्रतिज्ञा की है, जो करुणा दिखाता है, सामने आए समतुल्य शत्रुओं पर प्रहार करने में संकोच नहीं करता, जो स्वयं आकर चरणों में अवनत होने वाले लोगों को आयु भर के लिए शरण देता है, चोर, सर्प, हिंस, प्राणी, बीमारियां आदि से मुक्त नगर, व्यापारी, शहर और ग्राम जिस देश में है, जो देश उसने अपने पराक्रम से जीते हैं, जिन देशों के लोग उससे राजनिष्ठ हैं, वे पूर्वी और पश्चिमी आक्रावंती अनुपदेश, अनर्थ, सुराष्ट्र, शभ्र, मरु, कच्छ, सिंधु, सौवीर, कुकुर, अप्रांत और निषाद आदि सभी देश जिसके प्रभावों से अर्थ व काम पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं, उन देशों का स्वामी सभी योद्धाओं से लड़कर अपनी वीर कीर्ति स्थापित करके जो गर्वीले और उद्दंड हो गए थे, उन योद्धियों का उन्मूलन जिसने अपने बल से किया, दक्षिणापथ पति शातकर्णी को सीधे ढंग से दो बार पराजित करके भी संबंध की निकटता के कारण जिसका नाश नहीं किया, इस कारण उसको कीर्ति प्राप्त हुई है, राजच्युत राजाओं को जिसने पुनः सिंहासनसीन किया है, जो हाथ उठाकर यथार्थ रूप में उच्च न्याय के संबंध में अपना अनुराग व्यक्त करता है, जिसने शब्द विद्या, अर्थ विद्या, संगीत, न्याय आदि महान विद्याओं का संपूर्ण ज्ञान, संस्मरण, विज्ञान और प्रयोगों के द्वारा विपुल कीर्ति अर्जित की है, घोड़े, हाथी और रथ का प्रचलन, तलवार और ढाल से द्वंद्व युद्ध आदि में उत्कृष्ट सामर्थ्य, चपलता एवं उदार एवं सौष्ठ जिसने प्राप्त कर लिए हैं, सदा दान देना, आदर करना, अपमान न करना ही जिसका स्वभाव बन गया है, जो उदार है, न्याय मार्ग से प्राप्त कर शुल्क और भाग के कारण जिसका खजाना सोना, चांदी, हीरे, वैधुर्य और रत्नों से परिपूर्ण है, जिसने प्रसाद, लाघव, माधुर्य, वैचित्र तथा कांति शब्द गुणों से अलंकृत गद्य व पद्य रचे हैं, जिसका शरीर यथोचित लंबाई, चौड़ाई, स्वर, चाल, वर्ण, धैर्य, बल आदि श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त तथा सुंदर है, जिसने अपने पराक्रम से महाक्षत्र उपाधि स्वयं अधिगत की है, उसने राजकुमारियों के स्वयंवरों में अनेक मालाओं को प्राप्त किया है, उस महाक्षत्र रुद्रदामन ने हजारों वर्षों के लिए गोब्राह्मण के लिए धर्म और यश की वृद्धि हेतु पूर्वों तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को कर, बेगार तथा प्रणय से पीड़ित किए बगैर अपने निजी कोष से विशाल धनराशि खर्च करके थोड़े समय में 3 गुना लंबा, चौड़ा, अधिक मजबूत बांध बनवाकर यह तालाब ऐसा बनवाया कि सब उसे वह सुंदर दिखने लगे। इस विषय में महाक्षत्र के अमात्य गुणों से युक्त मंत्रियों तथा कर्मचारी अमात्यों ने अनुत्साही ही होकर निर्णय किया था कि बांध में पड़ी दरार की काफी बड़ी होने के कारण नया बांध का आरंभ ही न किया जाए, किंतु इस बांध के न होने से निराश प्रयासजनों ने जब हाहाकार मचाया, तब नगर और गांव की प्रजा के कल्याणार्थ राजा से संपूर्ण अनर्थ और सुराष्ट्र देशों की रक्षा के लिए नियुक्त कुलैब के पुत्र सुविशाख नामक पल्लव अमात्य ने, जो न्याय, अर्थ, धर्म और व्यवहार के कारण प्रजा का राजा से प्रेम बढ़ाता है, जो स्वयं सामर्थ्यवान, संयमी, धीर, गर्वरहित, सच्छील और नेक है, जो अपने कार्य से अपने स्वामी का पुण्य, यश एवं कीर्ति बढ़ाता है, उसने यह निर्माण पूर्ण किया। पल्लव वंश। पल्लवों तथा शकों का इतिहास एक दूसरे से अत्यधिक उलझा हुआ है, अतः उसे अलग अलग करना एक कठिन कार्य है। पल्लव मूलतः पार्थिया के निवासी थे। पार्थिया बैक्ट्रिया के पश्चिम की और कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित सेल्यूकसी साम्राज्य का सीमावर्ती प्रांत था। 3rd शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य बैक्ट्रिया के साथ ही पार्थिया के यवन क्षत्रप ने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, परंतु शीघ्र ही पूर्व की ओर से आने वाला कुछ व्यक्तियों ने यवन शासन की हत्या कर दी तथा उन्होंने जिस साम्राज्य की नींव डाली वह पार्थियन नाम से विख्यात हुआ। पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिद्रधात प्रथम था। था। पुर में उसने जियोड्रोसिया, हेरात तथा सिस्तान की विजय की थी। उसके बाद फ्रात द्वितीय तथा फिर आतवान ईशा राजा हुए, जो शकों के विरुद्ध युद्ध में मारे गए। मित्रदात द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसने शकों को परास्त किया तथा सिस्तान और गांधार पर अधिकार कर लिया। मित्रदात द्वितीय के बाद भी पार्थियनों का सिस्तान, आर्केसिया एरिया तथा काबुल घाटी में अधिकार बना रहा। इन प्रदेशों से मिले हुए सिक्कों से अनेक राजाओं के नाम ज्ञात होते हैं। पहले वे पार्थियन नरेशों के गवर्नर थे, परंतु बाद में स्वतंत्र हो गए तथा इंडो यूनानियों को परास्त कर उन्होंने भारत के कुछ भागों पर अधिकार भी कर लिया। भारत पर आक्रमण करने वाले पार्थियन सरदार मूलतः सिस्तान तथा आर्केसिया से आए थे। उन्हीं को भारतीय ग्रंथों से पल्लव कहा गया है। उनमें निम्नलिखित शासकों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला, वोनोनीज। जिस समय शक शासक म्यूस गांधार में शासन कर रहा था, वोनोनीज सिस्तान आर्केसिया तथा एरिया का राजा था। वह अपने सिक्कों पर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। उसके कुछ सिक्के यवन नरेश यूक्रेटाइटिस के सिक्कों के अनुकरण पर ढाले गए हैं। इस प्रकार के सिक्कों पर यूनानी तथा खरोष्टी दोनों ही लिपियों से लेख प्राप्त होते हैं। सिक्कों के पृष्ठभाग पर उसके भाई शप्लहोर तथा भतीजे शप्ल गडम के नाम मिलते हैं। संभवतः ये दोनों उसके प्रांतीय शासक थे। दूसरा, शेप्लेरिस। वोनोनीज के बाद शेप्लेरिस राजा हुआ। उसके कुछ सिक्कों के मुखभाग पर यूनानी लिपि में शेप्लेरिस का नाम तथा पृष्ठभाग पर शक नरेश एजेज का नाम खुदा है। इससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि संभवतः शक नरेश उसकी अधीनता में उपराजा था। इससे पार्थियनों का तक्षशिला पर अधिकार सूचित होता है। तीसरा, गोंडोफर्नीज। यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ। उसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्तेवाही से प्राप्त हुआ, जिस पर 103 की तिथि दी गई है। यदि इसे विक्रम संवत की तिथि स्वीकार की जाए तो ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि वह 103 से 57 46 ईस्वी में राज्य कर रहा था। यह तिथि उसके राज्यकाल के 26वें वर्ष की हैं। अतः उसने 20 ईस्वी 46 से 26 में शासन कार्य प्रारंभ किया था। गोंडोफर्नीज के सिक्के पंजाब, सिंध, कांधार, सिस्तान तथा काबुल घाटी में पाए गए हैं। इससे उसके साम्राज्य के विस्तृत होने की सूचना मिलती है। ऐसा लगता है कि शकों को परास्त कर उसने पंजाब तथा सिंध पर अधिकार कर लिया था। तक्षशिला उसकी राजधानी बनी। अस्प वर्मन, जो पहले शक नरेश एजेस द्वितीय की अधीनता में क्षत्रप था, अब गोंडोफर्नीज की अधीनता स्वीकार करने लगा। ईसाई अनुस्मृति में उसे संपूर्ण भारत का राजा कहा गया है, जिसके शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट टॉमस भारत आया था, परंतु इस अनुस्मृति की प्रामाणिकता काफ़ी संदिग्ध है। गोंडोफर्नीज के उत्तराधिकारियों के विषय में हमें निश्चय रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। सिक्कों से दो राजाओं के नाम मिलते हैं, एब्ड गेसस तथा पकोरिसस। ये दोनों निर्बल शासक थे। इसके बाद कुशानों के भारत पर आक्रमण हुए। कुशानों ने पल्लव को परास्त कर यहाँ अपना शासन कायम कर लिया, परंतु ऐसा लगता है कि पश्चिमी भारत में द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक पल्लव की सत्ता किसी न किसी रूप से बनी रही। सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र शातकर्णी को नासिक गुहालेख में किसी पल्लव राजा को उखाड़ फेंकने का श्रेय दिया गया है। महाक्षत्रप रुद्रदामन की अधीनता में सुविशाख नामक पल्लव सुराष्ट्र में शासन करता था। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर ध्रुमीय उपाधि उत्कीर्ण मिलती है। ऐसा लगता है कि शकों के समान वे भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए तथा उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। समाप्त।